जय धवला, पुस्तक सातवी, पुस्तक आठवी, लेक्चर नंबर सात.
ओम नमः सिद्धेव्य. ओम नमः सिद्धेव्य.
ओम नमः सिद्धेव्य.
ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाऊनं, पणनियनितंकमणो पच्चूहसमुद्रसंकमे दिनचलने बंदद महाहियारं वोच्छं जत्तेव संकमोलिनो.
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है. आठवीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें संक्रमण की चर्चा करते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 47 पर आ गए. 47 अभी हमारा एक जीव की अपेक्षा अंतर का अधिकार चल रहा है. तिबाताई कहते थोड़ा अंतर फिर दोबारा समझाओ क्या होता है. तो यहाँ किसकी बात चल रही है? संक्रमण की. पहले संक्रामक कौन जीव होता है उसको देखेंगे तो उसका अंतर हम देख सकते हैं. मिथ्या तो प्रकृति का संक्रामक यानी संक्रमण करने वाला कौन है? समय दृष्टि जीव है. तो जब उसका संक्रमण कर रहा था, उसका अंतर कब कहलाएगा? पहले संक्रमण कर रहा था, फिर संक्रमण नहीं कर रहा है और दोबारा संक्रमण करेगा. ये कैसे हो सकता है कि पहले समय दृष्टि था, फिर मिथ्यात्व में आ गया तो संक्रमण नहीं कर रहा है तो वापस समय तो प्राप्त करेगा, तो उसको अंतर कहेंगे. तो अर्लीस्ट सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आया, फिर दोबारा समय तो प्राप्त किया, कितना होता है?
अंतर्मूल.
तो उसका जघन्य अंतर एक अंतर्मूल होगा. अधिक से अधिक अंतर कितना है? तो कोई सम्यक तो प्राप्त किया उसने, मिथ्यात्व में गया तो संक्रमण रुक गया, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक मिथ्यात्व में ही रहा. अंतिम भव में लास्ट एक अंतर्मूल बाकी था, तब सम्यक तो प्राप्त करके आगे की सारे अंतर्मूल पार करके मोक्ष चला गया. तो जब सम्यक तो प्राप्त किया तो दोबारा संक्रमण हुआ मिथ्यात्व का. पहले किया था, सम्यक दृष्टि था तभी, फिर मिथ्यात्व में इतना काल बिताया तो संक्रमण नहीं किया और वापस सम्यक तो प्राप्त किया तो संक्रमण शुरू किया. इसको कहेंगे उत्कृष्ट अंतर मिथ्यात्व प्रकृति का. अब सम्यक और प्रकृति का हम देखेंगे. तो सम्यक प्रकृति, उसका संक्रमण कौन करता है? मिथ्या दृष्टि उद्वेल ना करने वाला है. जब संक्रमक कह के तो सत्ता भी है और संक्रमण भी करने वाला है, ऐसा लेना है. तो उसका उद्वेलना जब तक चल रही है, आवले में प्रविष्ट नहीं हुआ है, तब तक उसका संक्रमण चलता है. वो तो संक्रामक है, स्वामित्व है. अभी अंतर जब हम देखते हैं तो अंतर का अर्थ क्या है? वही जीव जब सम्यक तो प्राप्त करता है तो उसका संक्रामक नहीं है. सम्यक तो प्रकृति का संक्रामक सम्यक दृष्टि जीव नहीं है, मिथ्या दृष्टि जीव है. तो उसको सम्यक तो में रखना अधिक से अधिक काल तक, तो कितना होगा? दो. क्यों? क्योंकि तीसरे गुणस्थान में भी उसका संक्रमण नहीं है, इसलिए उसको लेना उसके साथ, तो वो साधिक में चला जाएगा. साधिक 266 सागर. इस तरह इसका हम देख रहे थे, अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे. यानी प्रत्येक प्रकृति का अंतर जब घटित करते हैं, तो जब संक्रमण कर रहा था, फिर संक्रमण नहीं कर रहा है और वापिस करने लगा, उसकी बात हम यहाँ देखेंगे. ये हम 40 पृष्ठ से फिर देखते हैं. एक जीव की अपेक्षा अंतर शुरू किया था ना हमने देखना, तो वहाँ तीनों की बात एक साथ पूछी है। नीचे से दूसरा सूत्र, मिथ्यात्व सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामक का अंतरकाल कितना है? तो जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है। अभी हमने सम्यक्त्व का भी देखा और मिथ्यात्व का भी देखा। उसमें भी मिथ्यात्व में ऐसा जीव लिया है जब जिसने अनेक बार सम्यक्त्व और मिथ्यात्व आना जाना हुआ है, तो उसका जो अंतर्मूर्त होगा वो छोटा होगा। उत्कृष्ट अंतर बताया था उपार्ध पुद्गल परावर्तन। जब सम्यक प्रकृति में उपार्ध पुद्गल परावर्तन उत्कृष्ट अंतर कहते हैं, वो तो सम्यक्त्व का काल तो हम ले सकते, परंतु यहाँ तो उसकी उद्वेलना पूरी होने के पश्चात सत्ता ही मिट गई। बाद में जब सत्ता प्राप्त करके फिर दोबारा मिथ्यात्व में आएगा तब लेना उसको, उस जीव को लिया उत्कृष्ट अंतर में। अब यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं 47 पृष्ठ पर, ये बात चल में है ना, उपार्थ पुद्गल परावर्तन क्यों कहा? ऐसे तो हमने अभी सोचा था कि जब तक सम्यक दृष्टि है तब तक अंतर है, वो अंतर है, परंतु उससे भी बड़ा अंतर कौन सा है? पहले संक्रमण कर रहा था, उद्वेलना पूरी हुई, संक्रमण रुक गया, अब जाके लास्ट में उसने फिर दोबारा अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद सम्यक्त्व प्राप्त किया, दोबारा मिथ्यात्व में आया, तब उसका अंतर समाप्त हुआ, यानी संक्रमण शुरू हुआ, अंतर समाप्त हुआ। अब सम्यक मिथ्यात्व के बारे में क्या विशेषता है? तो यहाँ जो जघन्य अंतर अंतर्मूर्त कहा था, सम्यक मिथ्यात्व की विशेषता क्या है? उसका संक्रमण सम्यक दृष्टि भी करता है और मिथ्या दृष्टि भी करता है, तो कौन नहीं करता है?
सम्यक मिथ्या दृष्टि और शासादन।
तो जब शासादन का एक समय अगर होगा
तो एक समय
के लिए शासादन में आया, वो एक समय के लिए संक्रमण नहीं करेगा, तो ये उसका अंतर कहलाएगा। जब संक्रमण नहीं कर रहा है वो अंतर हुआ। अब उसका उत्कृष्ट अंतर वही उपार्ध पुद्गल परावर्तन, यानी संक्रमण करके मिथ्या दृष्टि है, उद्वेलना करते करते सत्ता ही नष्ट हो गई, फिर अंतिम भव में फिर सम्यक्त्व प्राप्त किया, सम्यक्त्व प्राप्त करते ही सम्यक मिथ्यात्व से संक्रमण शुरू हुआ। बात ख्याल में, अभी हम पढ़ेंगे उसी को। देखो यहाँ जो सूत्र है, नवरी सम्मामिच्छत्तस्य संकामयंतरम जहन्नेन एय सम। पहले तो तीनों का एक ग्रुप बताया, क्यों? क्योंकि उत्कृष्ट तीनों का समान है इसलिए, और दो में तो जघन्य अंतर्मूर्त है, इसलिए पहले तीनों को एक साथ रखा। फिर भी उसमें से एक की विशेषता, इसलिए ये नवरी करके उसको, किंतु इतनी विशेषता है कि सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामक का जघन्य अंतरकाल एक समय है। जघन्य वो ध दिख रहा है, जघन्य खुलासा इस प्रकार है, कोई एक उपशम सम्यक दृष्टि जीव सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण करता हुआ स्थित है। उपशम समय के काल से ही दूसरे समय से उसका संक्रमण शुरू हो जाता है। उसने अपने सम्यक्त्व के काल में एक समय शेष रहने पर शासादन गुण स्थान में जाकर एक समय तक सम्यक मिथ्यात्व के संक्रम का अंतर किया, यानी वहां संक्रमण नहीं किया, और उसके अनंतर समय में फिर से उसका संक्रामक हो गया। क्यों? मिथ्यात्व में गया, क्योंकि एक समय के लिए ही शासादन में रहा। इस प्रकार सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामक का जघन्य अंतर एक समय प्राप्त हुआ। जब तक वो शासादन में एक समय के लिए रहा, ऐसा ही जीव लिया है जो एक समय के लिए शासादन में आया है, अधिक भी रह सकता है अन्य जीव, हमें जघन्य में जघन्य अंतर देखना है, इसलिए उसको एक समय वाला शासादन बनाया। अथवा सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करने वाला जो मिथ्या दृष्टि जीव आगे के पृष्ठ पर, सम्यक्त्व के अभिमुख होकर और अंतरकरण करके मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति के अंतिम समय में सम्यक मिथ्यात्व की अंतिम उद्वेलना फालिका पररूप से संक्रमण करके, ये क्या बात करे, जो उद्वेलना कर रहा है, अभी उद्वेलना पूरी होने के पहले ही उसने औपशमिक सम्यक के जो तीन करण परिणाम होते हैं उसको, यानी वो पांचों लब्धि वगैरह सब वहां प्राप्त की। अब उसका अनिवृत्तिकरण के परिणाम चल रहे हैं और अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में उसकी अंतिम खाली संक्रमित हुई, यहाँ लिखा ना, मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति के अंतिम समय में सम्यक मिथ्यात्व की अंतिम उद्वेलना फाली का पररूप से संक्रमण करके उपशम सम्यक दृष्टि हो गया।
एक समय के लिए
वह अपने प्रथम समय में सम्यक मिथ्यात्व के सत्व के उत्पन्न करने में लगा रहने के कारण, अभी उसके जो पहले में पहले उसका सत्ता तैयार होगी और फिर
संक्रमण
उसका संक्रमण होगा, तो प्रथम उपशम सम्यक के पहले समय में उसका संक्रमण नहीं है, दूसरे समय से संक्रमण शुरू होगा, इसलिए एक समय का अंतर पड़ेगा। दोनों पद्धति से बताया, सांसादन में जाकर आने वाले के भी बताया, उद्वेलना के अंतिम समय को प्राप्त होते होते उसी के पहले ही तीन करण परिणाम मांडे थे उसने, जब अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में पहुंचा है तो उसने अंतिम संक्रमण किया, अंतिम फाली का आवली बाकी है, परंतु उसका उपशम समय को प्राप्त करने पर उसका संक्रमण पहले समय में नहीं हो सकता, अधिक होते तो कर भी देता। यदि उसकी फाली अगर गिरना बाकी होती
तो
संक्रमण हो जाता बिना अंतर पड़े। जब हमने काल, उत्कृष्ट काल देखा था तो वहां ऐसा ही किया था, पल्ले के असंख्यात वे भाग काल तक उद्वेलना करते करते आया है, जब उसके अंतिम फाली संक्रमित होना है उसके पहले ही उसने औषमिक समय तो प्राप्त किया है, यानी उसका एक समय भी वेस्ट नहीं हुआ, संक्रामक का संक्रामक ही रहा। परंतु यहाँ पर उपशम समित्व के पहले समय में वो आवली में प्रविष्ट हो चुका था, इसलिए पहले समय में संक्रमण नहीं होगा, दूसरे समय से संक्रमण होगा, क्योंकि जो नीचे आवली में प्रविष्ट होता है उसका संक्रमण नहीं होता। हमने वो झीना झीन में भी देखा था ना, आवली वालों का संक्रमण नहीं होता, यानी वहां सत्ता होते हुए भी संक्रमण नहीं है। अब यदि इसके एक समय इसको देरी से अगर संक्रमण करता अंतिम फाली का, तो उपशम समय के पहले समय में भी उसका संक्रमण पॉसिबल था, वो अभी नहीं है, ये बात यहां बताना चाहिए। यहां देखा तीसरी लाइन 48 पृष्ठ पर, वह अपने प्रथम समय में सम्यक मिथ्यात्व के सत्व के उत्पन्न करने में लगा रहने के कारण, पहले समय में तो मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व हो जाएगा और सम्यक प्रकृति भी होगी डायरेक्ट। अब जो सम्यक मिथ्यात्व बना है वो दूसरे समय में सम्यक प्रकृति रूप से संक्रमण करने लगेगा, इसलिए एक समय तक सम्यक मिथ्यात्व के संक्रम का अंतर करके, यानी एक समय के लिए संक्रमण नहीं किया, दूसरे समय में फिर से संक्रामक हो गया, इस प्रकार सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामक का जघन्य अंतर एक समय प्राप्त हो जाता है। ये बात ख्याल में आई, दो पद्धति से बताए, सासादन में जाकर मिथ्यात्व में जाने वाला एक समय के लिए,
या
उद्वेलना करते हुए अंतिम संक्रमण किया, औषमिक समय तो प्राप्त किया, एक समय के लिए संक्रमण नहीं किया, दूसरे समय से संक्रमण शुरू हो, सम्यक मिथ्यात्व। हम अंतर देख रहे हैं यहाँ पर, पहले हमने उत्कृष्ट और जघन्य काल देखा था, संक्रमण करने का काल, अब यहाँ संक्रमण नहीं करने का काल देख, अंतर का अर्थ क्या है, संक्रमण नहीं कर रहा है बीच में। अब अन्य प्रकृतियों की बात करेंगे, अनंतानुबंधिनम संकामयंतरम केवचिरम कालादो होदी, अनंतानुबंधियों के संक्रामक का अंतर काल कितना है, जब वो संक्रमण नहीं कर रहा है उसको अंतर कहेंगे। यह सूत्र सुगम है। जहन्नेन अंतोमूर्तम, जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है। अब ये कैसे घटित करेंगे? देखो, पहले ये सोचना, अनंतानुबंधी का संक्रमण कौन सा जीव करता है? समय दृष्टि के मिथ्या दृष्टि,
दोनों करते हैं
तो कब नहीं करेंगे?
संयोजना हो जाएगी तो नहीं करेंगे।
विसंयोजना के बाद जब फिर संयोजना होती है
तभी संक्रामक हो जाएगा,
तो अवली काल तक नहीं होगा,
अंतर्मूर्तक नहीं होगा,
अंतर्मूर्तक
नहीं होगा,
नहीं होगा। तो ये कैसे नहीं होगा उसको बता रहे हैं। कोई एक जीव है जिसने विसंयोजना की अंतिम फाली का पतन करके अनंतानुबंधियों के संक्रम का अंतर किया। विसंयोजना के पहले ही उसने अंतर किया था, एक अवली जब बाकी थी तब, सही है। अब विसंयोजना करते ही वो संयोजना करेगा नहीं,
अंतर्मूर्त पश्चात
उसकी संयोजना होगी। फिर अति स्वल्प काल द्वारा अनंतानुबंधियों से संयुक्त होकर बंधावली काल के समाप्त होने के अनंतर समय में पुनः संक्रामक हो गया। मैंने वहाँ की भी आवली ली, विसंयोजना वाली भी आवली ली, और बीच में भी जो कुछ यथायोग्य काल गया, अति स्वल्प काल जो है वो सब मिलकर क्या कहलाएगा? एक अंतर्मूर्त। यानी जब विसंयोजना करते करते अंतिम फाली उसकी अन्य रूप हो गई, संक्रमण रुक गया, वो उदयावली में, यानी आवली में प्रवेश कर गया, उदयावली नहीं कहेंगे उसको, उसका उदय नहीं है, फिर भी आवली में प्रवेश कर गया, उसके बाद उसका संक्रमण रुक गया, उसके बाद तो उसकी सत्ता ही नष्ट हो गई। तो छोटे अंतर्मूर्त में फिर संयुक्त हुआ, तो संयुक्त हुआ का अर्थ क्या होता है? संयोजना में नया बंध होने लगा, तो नया बंध होते तो बंधावली में तो संक्रमण होता नहीं है,
एक अवली तक नहीं,
तो एक अवली के पश्चात उसका संक्रमण चालू हो जाएगा। दो अवली और बीच वाला अंतर्मूर्त छोटा, सब मिलकर भी अंतर्मूर्त
बड़ा हो जाएगा।
इस प्रकार अनंतानुबंधियों के संक्रामक का जघन्य अंतरकाल प्राप्त करना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब कहेंगे उत्कस्सेन वे छावर्थी सागरोपमानी सागरेयाणी। उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 266 सागर है। खुलासा इस प्रकार है, यानी अभी इसको पहले ही विसंयोजना करा के फिर 266 सागर काल तक घुमाना सम्यक्त्व में, और बाद में संयोजना कराएं। खुलासा इस प्रकार है, उत्कृष्ट अंतर का साधिक 266 सागर। कोई एक जीव है जिसने प्रथम उपशम सम्यक्त्व को ग्रहण करके उपशम सम्यक्त्व काल के भीतर अनंतानुबंधी की विसंयोजना की। उसी के भीतर करने का प्रयोजन है कि बाद में पूरे 266 सागर उसको मिलेंगे ना, विसंयोजना पहले ही कर दी और बाद में वेदक हुआ, तो वेदक सम्यक्त्व का पूरा काल उसको हम कहेंगे कि वो असंक्रामक रहा, क्योंकि उसकी सत्ता ही नहीं थी ना तक, क्योंकि उपशम सम्यक्त्व के काल में विसंयोजना की, तो विसंयोजना के बाद भी यथायोग्य अंतर्मूर्त तो वहां भी प्राप्त हुआ उसको। फिर वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त करके प्रथम 66 सागर काल तक परिभ्रमण किया, फिर उसके अंत में अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। विसंयोजना करने वाला जीव तीसरे गुणस्थान में जा सकता है, क्योंकि ऐसे उसका उदय तो है ही नहीं वहां पर, पहले और दूसरे गुणस्थान में ही उदय है अनंतानुबंधी का, तो यहाँ तो कोई संयोजना होने का ऐसा कोई सवाल ही नहीं था। फिर अंतर्मूर्त में सम्यक्त्व को प्राप्त करके तीसरे से फिर चौथे में गया, कि पांचवे में गया,
चौथे में
ही जाएगा। तीसरे से जाने के लिए दो ही रास्ते हैं, और आने के लिए
पहले
में आने वाला कहाँ से आ सकता है?
पहले से आएगा,
पहले से
चौथे से आएगा,
चौथे से, और पांचवे से और छठवे से भी आएगा। आने वाला तो आ सकता है पांचवे छठवे से, उसमें से जाने वाला या तो पहले में या तो चौथे में, दो ही रास्ते। तो ये वापस चौथे में गया क्योंकि अभी और 66 सागर उसको सम्यक्त्व में रखना है। तो अंतर्मुहूर्त में सम्यक्त्व को प्राप्त करके और उसके साथ दूसरे 66 सागर काल तक रहा। फिर उसमें थोड़ा काल शेष रहने पर मिथ्यात्व में गया। अंतर सिद्ध करना है, दोबारा संक्रमण कराना है उसको, तो उसकी सत्ता होगी तो संक्रमण करेगा। अब मिथ्यात्व में गया। इस प्रकार अनंतानुबंधियों के संक्रामक का उत्कृष्ट अंतरकाल प्राप्त हो जाता है। मिथ्यात्व में जाने पर भी आवली काल के पश्चात ही उसको संक्रामक कहेंगे। यहाँ पर प्रारंभ में अनंतानुबंधी की विसंजना करके स्थित हुए जीव के जो उपशम सम्यक्त्व का काल शेष बचता है, वह अंत में प्राप्त हुए मिथ्यात्व के जघन्य काल से बहुत है। लास्ट में फिर मिथ्यात्व को आया ना, वो मिथ्यात्व में आया है और आवली में उसने संक्रमण किया है, तो उस काल से बहुत बड़ा है वो काल। इसलिए उपशम सम्यक्त्व के पूर्वोक्त काल में से मिथ्यात्व के जघन्य काल को घटाकर उपशम सम्यक्त्व का जो काल शेष रहे उतना अधिक कहना चाहिए। आशय है कि दूसरे 66 सागर में से यद्यपि अंत में प्राप्त हुए मिथ्यात्व गुणस्थान का मिथ्यात्व करना उसको वो हुआ है। ये क्या कहना चाहते हैं? पहले 66 सागर में एक अंतर्मूर्त कम था, तब आया तीसरे गुणस्थान। दूसरे 66 सागर में एक अंतर्मूर्त बाकी था, तब आया मिथ्यात्व। पूरे 66 सागर रहता तो क्षायिक हो जाता, ये नियम है। तो अंतर्मूर्त पहले ही मिथ्यात्व में आया है,
वो काल छोटा है।
फिर आवली के बाद हुआ उसकी बात छोड़ दो, परंतु मिथ्यात्व में कब आया है? एक अंतर्मूर्त पहले, वो जो काल है। और पहला सम्यक्त्व का काल था, औपशमिक सम्यक्त्व का,
वो बड़ा।
कौन सा? विसंयोजना के पश्चात बाकी बचा हुआ औपशमिक का काल, उस लास्ट में जो मिथ्यात्व का अंतर्मूर्त है
उससे
बड़ा बहुत बड़ा है, इसलिए उसको साधिक दो 66 सागर का, नहीं तो कुछ कम दो 66 कहते। इसलिए उपशम सम्यक्त्व के पूर्वोक्त काल में से, पूर्वोक्त काल का अर्थ है विसंयोजना के बाद बचा हुआ काल, उसमें से मिथ्यात्व के जघन्य काल को घटाकर। ये पूरा काल इसलिए घटाया है क्योंकि 66 सागर में इतना कम था तभी मिथ्यात्व में आ गया। उपशम सम्यक्त्व का जो काल शेष रहे उतना अधिक कहना चाहिए। आशय यह है कि दूसरे 66 सागर में से यद्यपि अंत में प्राप्त हुए मिथ्यात्व गुणस्थान का जघन्य अंतर्मूर्त काल घट जाता है, पर इस 66 सागर में विसंयोजना के बाद बचे हुए उपशम सम्यक्त्व के काल के मिला देने पर वह 66 सागर से कुछ अधिक हो जाता है। ये बात ख्याल में आई? इसलिए यहाँ अनंतानुबंधियों के संक्रम का उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक दो 66 सागर प्रमाण कहा। उसकी सत्ता ही नष्ट हुई थी, उस अपेक्षा से अंतर कहा है यहाँ पर।
इसे तो हम ऐसे देखते हैं ना कि उपशम सम्यक्त्व से पहले समय से दो 66 सागर तक रहेगा तो उसका क्षायिक हो जाएगा।
नहीं ना, उपशम सम्यक्त्व के नहीं, वेदक सम्यक्त्व के ही पहले समय से लेना है। पहला भी 66 सागर अगर पूरा होता था तो क्षायिक हो जाता
था।
तो एक अंतर्मूर्त पहले तीसरे में लाया, दूसरी बार भी अगर पूरा हो जाता तो क्षायिक हो जाता, तो वहां मिथ्यात्व मिला है, वहां फिर दोबारा वो तीसरे में, नहीं तो ऐसा कायम रहेंगे ना तीसरे में और फिर ऐसा कायम नहीं रहेगा। दो 66 सागर ही है। अब आगे का सुन, शेषानम एक विषाय पैडीनम संकाम यंत्रम केवचिरम कालादो होई। शेष 21 प्रकृतियों के संक्रामक का अंतरकाल कितना है यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा ऊपर है ना, काला दो होई अनंतानुबंधियों के, हाँ वहां भी चाहिए ऊपर और नीचे। यहाँ दिया ना शेष 21 प्रकृतियों के संक्रामक का अंतरकाल कितना है, यह सूत्र सुगम जहन्य न एय समव, जघन्य अंतरकाल एक समय है, यानी इसके संक्रामक कौन है, समय दृष्टि भी है और मिथ्या दृष्टि भी है, दूसरे तीसरे गुणस्थान वाले है कि नहीं है,
संक्रामक है ना,
सब है सब है, दूसरे और तीसरे में मात्र दर्शन मोहनी के संक्रामक नहीं है, तो ये तो सर्वत्र है, तो कौन नहीं है संक्रामक,
उपशम श्रेणी,
तो उपशम श्रेणी में हम कहेंगे एक समय के लिए
असंक्रामक,
एक समय के लिए वो संक्रमण नहीं कर रहे थे
मर गए
और मर गए, इस तरह से लेंगे खुलासा देखते हैं। खुलासा इस प्रकार है, 21 प्रकृतियों के संक्रामक जिस जीव ने उपशम श्रेणी पर चढ़कर और अपने अपने स्थान में, अपना अपना स्थान इसलिए कहा कि सभी प्रकृतियों के एक साथ नहीं लेना है, यहाँ जो 21 प्रकृतियां हैं उसमें से एक एक प्रकृति अपने अपने स्थान पर जब उसका उपशम होता है तब एक समय के लिए रहकर फिर मरना है उसको, यदि सबका उपशम होने तक रुकेंगे तो जिसकी बात कर रहे हैं उसका बहुत काल हो जाएगा, एक समय घटित नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि प्रत्येक प्रकृति का उपशम अलग अलग लेवल पर अलग अलग स्थान पर होता है ना, इसलिए उसको ये ऐसा लेना है। तो ये कहते अपने अपने स्थान में उनका सर्वोपशमन करके एक समय तक उनके संक्रम का अंतर किया, फिर दूसरे समय में मरकर जो देव हुआ इसलिए अपने अपने स्थान में लिखा, उसके वहां उत्पन्न होने के पहले समय में ही इन प्रकृतियों के संक्रम का अंतर प्राप्त हो जाता है, अंतर प्राप्त होते हैं ना, फिर से संक्रमण शुरू हो जाता है। दसवें में नहीं लाना क्योंकि ग्यारहवें का पूरा काल अंतर्मूर्त है, इतने काल तक रुकेंगे तो नहीं चलेगा, और वो भी दसवें गुणस्थान में भी लोभ का संक्रमण किस में होगा, लोभ का तो अभी भी उदय हुआ है ना, पहले तो उपशमित था, तो जहां जिस पोजीशन पर जिसका संक्रमण रुक गया है
चौथे गुणस्थान,
एक समय के लिए रहकर मरकर वहां चौथे में गया है, चौथे में जाते ही उसका संक्रमण शुरू होगा, क्योंकि सारी जो चारित्र मोहिनी की सभी प्रकृतियां हैं उनका तो हमेशा ही संक्रमण होगा, केवल उपशम श्रेणी में नहीं होगा। आशय यह है जिस समय में जिस प्रकृति का सर्वोपशम होता है, ये इतना स्पष्ट लिखा है, अलग अलग प्रकृतियों का सर्वोपशम अलग अलग पोजीशन पर होगा, उसके एक समय बाद यदि वह उपशम करने वाला जीव मरकर देव हो जाता है तो उस प्रकृति के, उस विशिष्ट प्रकृति की बात चल रही है, उस प्रकृति के संक्रम का एक समय अंतर प्राप्त होता है। अब उपकस्येन अंतोमूर्तम्, उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है, सो कैसे, उसका समाधान, अनिवृत्तिकरण के काल के संख्यात भागों को बिताकर पहले कही गई सब प्रकृतियों का अपने अपने स्थान में सर्वोपशम शम करना, सम हुआ है ना, सर्वोपशम होने से वे असंक्रम भाव को प्राप्त हो जाती है, और इस प्रकार इनके संक्रम का अंतर करके उसी अंतर के साथ अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय और उपशांत मोह, इन तीन गुणस्थानों को क्रम से प्राप्त कर फिर उतरते समय सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान को बिताकर जब अनिवृत्तिकरण को प्राप्त होता है तब अपने अपने उपशम करने के स्थान में फिर से संक्रामक हो जाता है। देखो अलग अलग प्रकृतियों की उपशम ना अलग अलग लेवल पर होती है। जैसे पहले वेदों की होगी, फिर क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की। तो जिस पोजीशन पर जो जिसका उपशम हुआ है लौट कर फिर उसी पोजीशन पर आएगा तो फिर वहां उसका संक्रामक भी होगा। तो इतना अंतर्मुर्ख चला गया ना, ऊपर चढ़ के उतरा, फिर नौवे में था, फिर नौवे का रिमेनिंग काल, उर्वरित काल दसवा, ग्यारहवा, फिर दसवा, फिर नौवा का जो छोटा काल, और फिर दोबारा संक्रामक।
यहाँ पे संक्रामक को बंद की अपेक्षा दे लिया है,
बंद भी होगा वहाँ पर
नहीं, पर वहाँ पे तो संजलन का ही बंद होगा, तो संजलन संजलन में होगा, बाकी का तो संक्रमण नहीं होगा ना।
किसका बाकी का?
अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का, और जो चार जो नौ
जहाँ उपशम ना हुई थी वहाँ उपशम रुक गया है।
उपशम तो रुक गया पर हाँ। संक्रामक कभी होगा जो नया बंद की अपेक्षा संक्रमण।
बंद किसकी चाहिए? जिसका संक्रमण होना चाहिए कि जिसमें संक्रमण होना
जिस
चाहिए?
जिसमें संक्रमण होना है
हाँ, तो उसका तो बंद भी है, हृदय भी है।
नहीं पर ये जो अप्रत्याख्यान का तो चौथे गुण स्तर में आने के
हम संक्रमण किसका हो रहा है?
अच्छा संज्वलन सभी का हो रहा है।
संक्रमण का बंद है तो संक्रमण में संज्वलन में संक्रमण हो रहा है,
सभी का संज्वलन रूप हो रहा है,
संज्वलन रूप हो रहा है, क्योंकि जिसका बंद होता है उसमें संक्रमण कर रहे हैं। हमें किसका हो रहा है इसकी हम बात कर रहे हैं, किसमें हो रहा है ये विषय अलग है, उसको प्रतिग्रह में लेंगे। उसको प्रतिग्रह कहते हैं, जिस प्रकृति में संक्रमण हो रहा है उस प्रकृति को कहेंगे प्रकृति प्रतिग्रह। अब हम संक्रमण की बात करें, अब हम उसका विषय नहीं निकालेंगे, कौन सी प्रकृति संक्रमित हो रही है बस उसकी बात करें। हाँ बीच वाला आवली नहीं लेने वहां पर। हाँ उसका संक्रमण कब शुरू होगा? वो आवली के बाद होगा तो आवली के बाद संक्रमण कब शुरू हुआ ये बात यहाँ बताइए। उसका उदय या बंद कब होगा ऐसा नहीं कहा
नहीं,
और बंद की बात भले बंद हो रहा है परंतु वहाँ सत्ता में तो पड़े हैं। सत्ता में जो पड़े हैं उपशमित, उनके बंद होके बहुत काल बीत गया है।
हाँ।
नया बंधने की अपेक्षा नहीं है, अभी नया बंद हो रहा है परंतु सत्ता में पूर्व में जो पड़े हैं उस रूप तो हो गए कि नहीं?
संज्वलन का अंदर अंदर होगा और बाकी का संज्वलन रूप होगा।
हाँ बाकी
और पुरुष वेद रूप और
हाँ किसमें होता है अभी हम भूल जाएंगे, किसका हो रहा है? तो जो उपशमित हुआ जिस पोजीशन पर संक्रमण रुक गए हम कहेंगे, वापस आए के उसी पोजीशन पर संक्रमण चालू हो गया तो बीच में अंतर्मुख चला गया। ये अर्धपुद्गल परावर्तन वगैरह इसमें नहीं लगेगा क्योंकि मिथ्या दृष्टि के भी और समय दृष्टि के भी संक्रमण सदैव चलता है, श्रेणी में नहीं होता है
उपशम,
परंतु उपशम श्रेणी की बात। देखो अंतर्मुहूर्त काल प्राप्त होता है 50 पेज पर लास्ट शब्द सेकंड लाइन में, किंतु इतनी विशेषता है कि अनुपूर्वी संक्रम के प्रारंभ से लोभ संज्वलन के संक्रम के अंतर का प्रारंभ करे, जो अनुपूर्वी संक्रम के समाप्त होने तक चालू रहता है। इस प्रकार लोभ संज्वलन के संक्रम का अंतर अनुपूर्वी संक्रम के प्रारंभ से उसकी समाप्ति तक कहना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं?
लोभ का लोभ रूपी संक्रमण लिया है?
नहीं
नहीं,
अनुपूर्वी संक्रमण किसको कहते मालूम है? क्रम से ने क्या? देखो जब हमने देखा मिथ्यात्व में था, समय दृष्टि था, जब तक वो श्रेणी नहीं चल रहा था तो कोई भी कषाय किस भी रूप हो सकती थी। लोभ है वो माया हो जाए, मान हो जाए, क्रोध हो जाए, कुछ भी हो, कषाय नो कषाय सबका आपस में संक्रमण हो सकता था। अब जब श्रेणी चल रहा है तो अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में आया है तो विशिष्ट लेवल पर उसका अनुपूर्वी संक्रमण होता है, यानी यहाँ क्रम से ही जो क्रोध है वो मान रूप ही होगा, मान है वो माया रूप और माया है वो लोभ रूप होगा, यानी लोभ किसी रूप नहीं हो रहा है ये बात कहना चाहते हैं। लोभ का संक्रमण नहीं हो रहा है लोभ में संक्रमण होगा उसको तो हम प्रतिग्रह में देखेंगे। लोभ प्रकृति अन्य प्रकृति रूप नहीं हो रहे, वो रुक गया अभी उसका, क्योंकि प्रत्येक जो क्रोध है वो मान रूप ही होगी, मान है वो माया रूप ही होगी। अभी उल्टा पुल्टा पहले कैसे भी संक्रमण होता था वो रुक गया अभी, ये उसकी विशेषता है श्रेणी की, कि यहाँ से अनुपूर्वी संक्रमण शुरू हुआ है तो यहाँ क्या कहते हैं इतनी विशेषता है। तीसरी लाइन, अनुपूर्वी संक्रम के प्रारंभ से लोभ संज्वलन के संक्रम का अंतर का प्रारंभ कर, यानी यहाँ पर अभी लोभ का संक्रमण रुक गया है, अनुपूर्वी संक्रमण शुरू हुआ तो सब लास्ट में जाके लोभ में ही होने वाले हैं परिवर्तित, परंतु लोभ किसी अन्य रूप नहीं होगा।
तो यहाँ पे माया का संक्रमण हुआ उसके पश्चात संक्रमण रुक गया ऐसे बता रहा
है। माया का हुआ, लोभ का कहाँ हुआ?
नहीं नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ कि जब श्रेणी चढ़ता है तभी अनुपूर्वी रूप माया का लोभ रूप हो गया,
अनुपूर्वी का शुरू हुआ क्रोध का मान रूप होना,
हाँ
उसी समय से लोभ का संक्रमण रुक गया।
नहीं पीछे लोभ रूप कोई,
यानी लोभ 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 का अन्य किसी में भी संक्रमण नहीं हुआ जब अनुपूर्वी शुरू हो गई है। हाँ तो ये तो हम क्रोध का मान का माया ले रहे, पर हम लोभ की बात करेंगे अगर, तो लोभ का किसी अन्य रूप संक्रमण होता ही नहीं। तो अनुपूर्वी संक्रमण के पूर्व में लोभ का संक्रमण हुआ था, अनुपूर्वी संक्रमण शुरू होते ही लोभ का अन्य किसी में भी संक्रमण नहीं होता, वो असंक्रामक हो जाता है। यानी अनुपूर्वी संक्रमण शुरू होने पर लोभ का संक्रमण होता ही नहीं। पूर्व में भले वो मुनि अवस्था में था या श्रेणी चढ़ने में आठवें गुण स्थान में भी था तो लोभ भी अन्य रूप होता था, सारे चारों ही आपस में एक दूसरे में संक्रमित होते थे। अनुपूर्वी शुरू हुआ तो बस अभी उसका वन वे है, और वन में भी
लोभ का संक्रमण,
लोभ का तो संक्रमण होता ही नहीं अन्य किसी रूप, क्योंकि लोभ अपने रूप से उदय में आकर उपशमित हो रहा है वहां पर। इस प्रकार लोभ संज्वलन के संक्रम का अंतर अनुपूर्वी संक्रम के प्रारंभ से उसकी समाप्ति तक कहना चाहिए, तो लोभ संक्रम का जो अंतर है वो बड़ा होगा। ख्याल में है ना, माया के लिए तो माया तो लोभ रूप होता है, तो उस पोजीशन से हम लेंगे वापस
माया
पोजीशन तक। इस प्रकार ओघ से अंतरकाल समाप्त हुआ, ये ओघ में हमने इन जनरल बात की। अब देशामर्शक सूत्र के द्वारा सूचित होने वाला है, वाले आदेश का ओघानुवाद पूर्वक उच्चारणा के आश्रय से कथन करते हैं। ये तो चूर्णी सूत्रकार ने तो इतना ही बताया है, उच्चारणाचार्य ने ओघ को बताते हुए आदेश को भी बताया है, इसलिए कहते ओघानुवाद पूर्वक आदेश का कथन करेंगे, जो इस प्रकार है। अंतरानुगम की अपेक्षा, ये दोबारा अंतर की बात कर रहे हैं, परंतु अभी और स्पष्टीकरण करेंगे क्योंकि उच्चारणाचार्य ने उसके विस्तार से बताया है, आदेश में भी बताया है। अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। इनमें से ओघ की अपेक्षा मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के संक्रामक का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है। मिथ्यात्व का अंतर जो वो मिथ्यात्व में गया है, और सम्यक्त्व के संक्रामक का अंतर जब वो समय दृष्टि हुआ है एक अंतर्मूर्त के लिए। सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामक का जघन्य अंतरकाल एक समय है जब वो सासाधन में गया था, हमने देखा था ना अभी इसको,
और प्रथम ऑप्शन
तथा तीनों के संक्रामक का उत्कृष्ट अंतरकाल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि मिथ्यात्व में आया है और अंत में फिर सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, बीच में अंतर है। सम्यक प्रकृति के बारे में पहले पहले भाव में उसने समय को प्राप्त करके मिथ्या समय गया, उद्वेलना पूर्ण की, उसके बाद अंतर चालू हो गया। अंतिम भाव में फिर समय को प्राप्त करके फिर मिथ्या समय आया तो संक्रमण शुरू किया, तो उसका अंतर घटित हुआ। तो उपार्ध पुद्गल परिवर्तन तीनों में ही घटित होता है, परंतु सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में वो पल्ले का असंख्यात्व अभाव, उसके बाद अंतर शुरू हुआ था मिथ्यात्व में आने पर। अनंतानुबंधी चतुष्क के संक्रामक का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है। विषय योजना में जब आवली में प्रवेश किया तब संक्रमण रुक गया था, एक छोटे में अंतर्मूर्त में फिर वो मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ और आवली काल में फिर उसका संक्रमण शुरू हो गया। उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक दो छासर सागर है। विषय योजना कराना पहले ही उपशम सम्यक्तो के काल में और बाद में दो छासर सागर तक सम्यक्तो और बीच में समय मिथ्यात्व में रखना और लास्ट अंतर्मूर्त में मिथ्यात्व में लाना और संक्रमण कराना दोबारा। 12 कषाय और 9 नौ कषाय जिसको हम ऊपर हमने 21 कहा था, उनके संक्रामक का जघन्य अंतरकाल एक समय है, यानी अपनी अपनी उपशमना पूरी होने पर एक समय तक रहकर मिरकर देव हुआ। उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यानी बिना मरे उपशम श्रेणी चढ़ के उतरे तो जहां संक्रमण रुक गया था और जहां फिर वापस चालू हुआ तो बीच वाला अंतर्मूर्त होगा उसका अंतर। विशेषार्थ, इन सब अंतरकालों का खुलासा 24 सूत्रों का व्याख्यान करते समय टीकाकार स्वयं कराए हैं, इसलिए वहां से जान लेना चाहिए। हमने वहां भी देखा, अभी दोबारा रिपीट भी किया। अब आदेश की बात यह मुख्यता से हमें देखनी थी तो उसको यहां बताएंगे। आदेश की अपेक्षा नारकियों में मिथ्यात्व सम्यक्त्व और अनंतानुबंधी चतुष्क के संक्रामक का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, जो ओघ में भी देखा था हमने, जघन्य अंतर्मूर्त तो वहां भी था। सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामक का जघन्य काल एक समय है, वो भी हमने देखा था, जो सासादन में जाके फिर मिथ्यात्व में जाता है एक समय के लिए। तथा सभी के संक्रामक का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 33 सागर है। देखो ओघ में क्या हमने देखा था, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति का कितना देखा था, उपार्ध पुद्गल बराबर। पर यहाँ नरक की बात है, उसको नारकी रखना है ना, तो उसमें कुछ कम 33 सागर ले लेना। मिथ्यात्व का अंतरकाल कैसे संक्रामक का, पहले समय यानी वहां गया सातवें नरक में, अंतर्मूर्त के बाद सम्यक तो प्राप्त किया, सम्यक में मिथ्यात्व का संक्रमण कर रहा था, फिर मिथ्यात्व में आया तो उसका अंतर शुरू हुआ। अब लास्ट में तो उसको मिथ्यात्व में ही रखना है, उसके पहले यथायोग्य अंतर्मूर्त काल पहले समय तो मिथ्यात्व का संक्रमण शुरू किया, बाद में वो अंतर्मूर्त में मिथ्यात्व में जाएगा, आयु बांधेगा, मरेगा, वो सब बाद में करेगा बात, तो ये उसका अंतर होगा। अभी सम्यक्त्व का अंतर कैसे घटित करना है,
सम्यक्त्व प्राप्त किया, मिथ्यात्व में गया और पल्ले के असंख्यात्व काल तक किया और पीछे बंद हो गए,
नहीं उत्कृष्ट अंतर करना है हमको
सम्यक्त्व का।
हाँ सम्यक्त्व का कैसे करेंगे,
अच्छा उद्वेलना करते करते आया, एक
उद्वेलना करते करते आया था
एक समय,
उसकी अंतिम फाली नरक में आने पर एक समय पहले समय में संक्रमित
और अंत पे जाके सम्यक्त्व,
आवली में प्रवेश किया तो उसका संक्रमण रुक गया,
अंत पे जाके सम्यक्त्व,
अंत में जब सम्यक्त्व प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में आया तो उसका फिर उद्वेलना यानी संक्रमण शुरू हुआ, तो उसका उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर। अब सम्यक मिथ्यात्व में कैसा घटित करेंगे,
सासादन में एक समय लाना है, एक समय के लिए सासादन में गया और
वो मिथ्यात्व में आया तो भी उसकी उद्वेलना तो चालू होगी,
नहीं नहीं सम्यक मिथ्यात्व का सासादन में संक्रमण नहीं होता है,
नहीं होता, हमको उत्कृष्ट काल घटित करना है।
अच्छा उत्कृष्ट काल,
वैसे ही वो उद्वेलना करते करते आया, यहाँ एक समय के लिए उद्वेलना करके सत्ता ही नष्ट हुए और अंत में जाके सम्यक तो प्राप्त किया
और मिथ्यात्व होने गए,
सम्यक तो होते ही उसके शुरू हो गया संक्रमण शुरू हो गया। इस तरह में घटित करेंगे। सत्ता नष्ट, अंतर में सत्ता नष्ट वाले को ही लिया है, विसंयोजन वाले को भी लिया और इसको भी लिया हमने।
नहीं,
की बात नहीं, जब अंतर अंतर दोबारा सत्ता तैयार होती है ना, पहले उद्वेलना पूरी
हो गई,
क्योंकि बिना सत्ता का ही हमने अर्ध पुद्गल परावर्तन देखा था। ओग में जो अर्ध पुद्गल परावर्तन देखा था, उद्वेलना पूरी करके सत्ता नष्ट हुई थी, और बाद में जब सत्ता हुई और संक्रमण किया तब हमने अंतर घटित किया था। तो यहाँ तो ऐसा ही करना है, नरक में करना है। किंतु यहाँ 12 कषाय और 9 कषायों के संक्रामक का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि वो मात्र उपशम समयत्व में घटित होता है, उपशम श्रेणी समयत्व में, उपशम श्रेणी में घटित होता है। इसी प्रकार सब नरकों के नारकियों में अंतरकाल का कथन करना चाहिए। ये तो नरक इन जनरल बात की, तो 33 सागर की बात बताए, अपने अपने नरक में अपनी अपनी स्थिति समझ। किंतु उत्कृष्ट अंतरकाल कहते समय सर्वत्र कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। 51 पेज पर आया, 51 नंबर। यहाँ संक्रमण का प्रकरण चल रहा है अपना, 8वीं पुस्तक है ना, और वहाँ अभी संक्रमण में अंतर की बात चल रही है, उसका विशेषार्थ हम 51 पृष्ठ पर देख रहे हैं। मैंने प्रत्येक प्रकृति का संक्रामक कौन है वो पहले हमने देख लिया था। मिथ्यात्व का संक्रमण मात्र समय दृष्टि ही करता है, मिथ्यात्व प्रकृति का। सम्यक प्रकृति का संक्रमण मिथ्या दृष्टि करता है उद्वेलना के काल में। सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण सम्यक दृष्टि भी करता है और मिथ्या दृष्टि भी करता है। मिथ्या दृष्टि तो उद्वेलना करता है, सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्यात्व से सम्यक रूप परिणमित होता है। अभी यह विशेष उसके अंतर की बात चल रही है। अभी पहले हमने स्वामित्व देखा, जब वो उससे अन्य गुण स्थानों में चला जाता है जहाँ संक्रमण कर रहा है, उससे छोड़कर अन्यत्र जहाँ संक्रमण नहीं हो रहा है, तब उसका हम अंतर घटित करेंगे। ये अभी हम आदेश में देख रहे हैं, नरक में देख रहे थे। मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क इनके संक्रामक के जघन्य अंतर का खुलासा जिस प्रकार ओघ प्ररूपणा के समय चुन्नी सूत्रों की व्याख्या करते हुए किया है, उसी प्रकार यहाँ भी जान लेना चाहिए। तथा इन सबके संक्रामक का उत्कृष्ट अंतरकाल नरक की उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा से कहा है, जो अपनी अपनी दृष्टि से घटित कर लेना चाहिए। अभी उदाहरण बता रहे, उदाहरणार्थ एक ऐसा जीव लो जिसने नरक में उत्पन्न होने के अंतर्मूर्त बाद उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करके मिथ्यात्व का संक्रम किया, फिर 6 आवली काल शेष रहने पर वह सासाधन भाव को प्राप्त होकर उसका असंक्रामक हुआ, और फिर जीवन भर असंक्रामक ही रहा। जीवन भर क्यों? क्योंकि वहां से मिथ्यात्व में गया तो असंक्रामक ही रहा, सासाधन में तो मात्र 6 अवली तक रहा, नहीं तो जीवन भर सासाधन में मत रखना उसको। किंतु अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर यदि वह उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करके फिर से मिथ्यात्व का संक्रम करने लगता है, ये उपशम सम्यक्त्व ही क्यों कहा?
सत्ता ही नहीं है ना,
अरे इतना लंबा काल बीत गया ना उसका।
26 की सत्ता वाला
तो नरक में मिथ्यात्व के संक्रम का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 33 सागर हुआ, 33 सागर प्राप्त हो जाता है। जो जीव नरक में उत्पन्न होकर एक समय तक, अभी सम्यक प्रकृति की बात बताएंगे, यानी वो पहले भव से उद्वेलना करते करते आया है, एक समय तक सम्यक्त्व का उद्वेलना संक्रम करके, उद्वेलना संक्रम, देखो यहाँ वो आवली में जब प्रवेश करता है तो संक्रम रुक जाता है, तो उसकी जो अंतिम फाली जो संक्रमित हुई उद्वेलना की, उस समय लेना। उसके बाद भी आवली प्रमाण उसका जो काल शेष है
पर वो संक्रामक नहीं कहेंगे,
फिर भी उसको हम संक्रामक नहीं कहेंगे। जैसे हमने जीन अजीन में देखा था, जो आवली में प्रवेश कर चुके उदयावली, तो उसका संक्रमण अपकर्षण उत्कर्षण कुछ नहीं होता। पहले हमने देखा था, फिर से जो जीव नरक में उत्पन्न होकर एक समय तक सम्यक्त्व का उद्वेलना संक्रम करके दूसरे समय में असंक्रामक हो जाता है और फिर आयु के अंत में उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करके अति स्वल्प काल द्वारा मिथ्यात्व में जाकर सम्यक्त्व का संक्रम करने लगता है। पहले तो उसने उद्वेलना के द्वारा उसकी सत्ता ही नष्ट की थी, अब लास्ट में उसने
सम्यक्त्व प्राप्त किया,
सम्यक्त्व प्राप्त किया और फिर मिथ्यात्व में गया। तो सम्यक प्रकृति का संक्रमण शुरू करें, उसके सम्यक्व के संक्रामक का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 33 सागर प्राप्त होता है। अब सम्यक मिथ्यात्व की बात करें, सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामक का उत्कृष्ट अंतरकाल भी इसी प्रकार से घटित करना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है इस जीव को अंत में सम्यक्व उत्पन्न कराकर और उसके दूसरे समय से ही संक्रामक कहना चाहिए। यानी ये कौन सा जीव लेना, पहले उद्वेलना करते करते आया है, सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना पूरी होने में एक समय बाकी था, नरक में उत्पन्न होने पर उसने वो अंतिम फाली संक्रमित कर दी, उद्वेलना कर दी और फिर उसके संक्रमण रुक गया, फिर सत्ता में से भी नष्ट हो गया, आयु के अंत में जाकर सम्यक तो प्राप्त किया, औपचारिक समय तो प्राप्त करेगा क्योंकि इतने सागरों तक तो बिना सत्ता वाला रहा है, वो 26 की सत्ता वाला है, तो औपचारिक समय तो प्राप्त करेगा। तो पहले समय में सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण नहीं होगा, दूसरे समय से होगा, तो ये वहां तक उसका अंतर कहेंगे। दूसरे समय से ही संक्रामक कहना चाहिए क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का संक्रम सम्यक दृष्टि के भी होता है कहा, क्योंकि उद्वेलना में मिथ्या दृष्टि के भी होता है और अन्यथा तो सम्यक दृष्टि के भी होता है। अनंतानुबंधी की अपेक्षा अभी अनंत, देखो सम्यक तो सम्यक मिथ्या तो में हमने उद्वेलना की अपेक्षा लगाई, अनंतानुबंधी में विषय योजना की अपेक्षा लगानी है, तो शुरू में विषय योजना करा के उसको रखेंगे ऐसा है, फिर लास्ट में फिर
मिथ्यात्व मिलेगी।
हाँ, अनंतानुबंधी की अपेक्षा यदि प्रारंभ में विषय योजना करावे और अंत में मिथ्यात्व में ले जाए तो कुछ कम 33 सागर प्रमाण अंतरकाल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अनंतानुबंधी की भी सम्यक दृष्टि भी संक्रामक है और मिथ्या दृष्टि भी संक्रामक है। तो क्या करना अंतर के लिए, सम्यक पहले सम्यक तो प्राप्त कराना, विषय योजना कराने और अंतर चालू किया उसने, तो लास्ट में जाके मिथ्या तो मिलाना, तो संयोजना होने पर फिर उसका संक्रमण चालू हो जाएगा आवली काल। अब शेष रही 12 कषाय और 9 कषाय, इनके संक्रामक का अंतरकाल उपशम श्रेणी में ही संभव है। तो जिन जिन मार्गणाओं में उपशम श्रेणी नहीं है,
मनुष्य के सिवा
कौन सी मार्गणा में उपशम श्रेणी हो सकती है बोलो,
मनुष्य रिलेटेड, पर्याप्त मनुष्य रिलेटेड,
हाँ इन्हें मनुष्य गति में, इन्हें सामान्य मनुष्यों में कहेंगे, मनुष्य पर्याप्त में कहेंगे, मनुष्य में भी कहेंगे क्योंकि भाववेद की अपेक्षा आती है, फिर इंद्रिय मार्गणा में पंचेंद्रियों में कहेंगे, काय मार्गणा में त्रसों को कहेंगे, इस तरह से हमको सोचना है। योग मार्गणा में अंतर नहीं होगा क्योंकि योग पलटते रहते हैं,
अंतर्मुत वाला योग,
इस तरह से हमें सोचना है। अब आगे, और नरक में उपशम श्रेणी होती नहीं, हम तो यहाँ नरक की बात देख रहे हैं, यहाँ उपशम श्रेणी है नहीं है, अतः नरक में इनके संक्रम के अंतरकाल का निषेध किया है, फुल स्टॉप देना है यहाँ, दंड। अब तिर्यंचों में घटित करेंगे अंतर काल। तिर्यंचों में मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामक का अंतर काल ओघ के समान है। ओघ के समान है का अर्थ क्या है?
अंतर्मूर्त और उपार्थ उत्कल।
हाँ, जघन्य अंतर्मूर्त सम्यक मिथ्यात्व के लिए एक समय और उत्कृष्ट काल
उपार्थ उत्कल पर।
हाँ, उपार्थ उत्कल पर। यानी इतने काल तक वो तिर्यंच में ही रहा, ये तो पॉसिबल है कि नहीं? अन्य गतियों में तो पॉसिबल नहीं था, परंतु तिर्यंचों में ये हो सकता है। यानी अंत में भी जाके फिर दोबारा उसने औपचारिक समय का प्राप्त किया, उसके लिए जो पांच लब्धि वगैरह वो सब वहां प्राप्त होगी उसके। अनंतानुबंधी चतुष्क के संक्रामक का जघन्य अंतर काल अंतर्मूर्त है, जो अन्यत्र जैसे हमने ओघ में देखा था। और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम तीन पल्ल्य है। देखो, उत्कृष्ट अंतरकाल के लिए विसंयोजना करानी, एक बार शुरू में और एक बार अंत में जाकर संयोजना करानी, तो तीन पल्ले के साथ जो शायिक है उसका तो सवाल ही नहीं है। तो ये मिथ्यात्व के साथ तीन पल्ले वाली तिर्यंच की उत्कृष्ट भोग भूमि में, उत्तम भोग भूमि में जन्मा, तिर्यंचों की बात चली ना, तो वहां जाके उसने सम्यक तो प्राप्त किया और उसी में उसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की। और उसके बाद
सत्ता में ही नहीं रहा, तो संक्रामक नहीं रहा,
तो सत्ता में नहीं रहा,
अंत में जाके मिथ्या,
यानी समय दृष्टि रखना उसको, और फिर लास्ट में जाके मिथ्या दृष्टि बनाना, तो उसका संक्रमण फिर से होगा। ये कुछ कम तीन पल्ल्य हुआ अंतर। किंतु 12 कषाय और 9 कषायों के संक्रामक का अंतर काल नहीं है, क्योंकि हमने देखा है तो उपशम श्रेणी में ही होता है, अन्यथा समय दृष्टि हो, कौन से भी गुणस्थान वाले हो, उसका तो संक्रामक रहेगा ही। पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में अंतरकाल का कथन इसी प्रकार जानना चाहिए। किंतु इतनी विशेषता है, इनके मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के संक्रामक का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामक का जघन्य अंतरकाल एक समय है, ये तो उसके समान ही है, तथा इन सब के संक्रामक का उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्ल्य है।
95
वहाँ हमने कितना देखा था? अर्ध पुद्गल पर,
यहाँ पे 95
क्योंकि वहाँ सामान्य तिर्यंचों की बात थी, यहाँ इतना अर्ध पुद्गल परावर्तन तो एक एक ही उनके गए बिना वो तो घटित ही नहीं होगा। और यहाँ हमारी अभी क्राइटेरिया क्या है? मार्गणा
पंचेंद्रिय तिर्यंच,
तो उसमें तो कितना हो सकता है? तो पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्ल्य, हर एक के लिए अपना अपना काल अलग। कल हमने देखा था जो पंचेंद्रिय तिर्यंच इन जनरल सामान्य कहेंगे, उसमें संगी भी है, असंगी भी है, पर्याप्त भी है,
प्लस तीन पल्ल्य,
तो 95 पूर्व कोटि प्लस तीन पल्ल्य। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तों में
47 प्लस तीन,
क्योंकि बीच में अंतर्मूर्त वाला वो अपर्याप्त का नहीं लेना, तो 47 पूर्व कोटि और तीन पल्ल्य। और तिर्यंचनी में
15
लेना, क्योंकि संगी के
और असंगी के
आठ, उसमें से एक बहुत तीन पल्ले वाला लेना लास्ट पर। तो अपना अपना कथन जानना, उसमें
तीन पल्ले वाला संगी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि असंगी
तीन पल्ले वाला भी संगी लेना और वहां जाने वाला भी संगी लेना। वही तो कह रहे, यानी वहां जाने वाला भी असंगी, असंगी को भोग भूमि की नहीं आयु बनेगी, संगी पंचेंद्रिय वहां जाएगा। हाँ। असंगी भवनवासी में जा सकता है, नरक में जा सकता है। तो भोग भूमि में जाने वाले कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंच संगी पंचेंद्रिय ही हो गए, है ना?
तो कल मैंने पूछा था कि असंगी भोग भूमि में जा सकता है कि नहीं जा सकता नहीं जा सकता है ना, तो कल मैं ऐसा समझा था जा सकता है
ना, असंगी नहीं जाता। और वहाँ के सभी जीव संगी पंचेंद्रिय ही है, आपने वहाँ के जीवों की बात पूछी थी, वहाँ कोई असंगी होते क्या, ऐसा पूछा था?
हाँ।
वहाँ तो होते नहीं, वहाँ जाने वाले भी नहीं होंगे। यहाँ बताए ना पूर्वकटि पृथकता अधिक तीन पहले नीचे से चौथी लाइन लास्ट में पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्त मनुष्य अपर्याप्त और अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देव इनमें सब प्रकृतियों के संक्रामक का अंतरकाल नहीं है। क्यों? जो ये अपर्याप्त है दोनों उसमें तो एक मिथ्या तो स्थान ही है,
सम्यक दृष्टि है
और वहाँ मात्र सम्यक दृष्टि है, तो उसमें कहते उसका अंतर नहीं है। बात यह है कि इन मार्गण स्थानों में गुणस्थान नहीं बदलता, इसलिए अंतरकाल नहीं प्राप्त होता। यानी जो कोई जिसका सम्यक है वो सम्यक दृष्टि है, जो मिथ्यात्व है मिथ्या दृष्टि। सर्वा सिद्धि वालों में सभी सम्यक दृष्टि है, गुणस्थान ही नहीं बदलता। तो अनंतानुबंधी का भी अंतर हम देखते ना, विसंयोजना तो हो सकती है
पर
वापस संयोजना नहीं होती, तो इसलिए अंतर नहीं घटित होगा। मनुष्य त्रिक में पंचेंद्रिय तीर्यंच के समान भंग है। अब मनुष्यों में क्या विशेषता होगी? उसमें उपशम श्रेणी होगी, तो उसके लिए हाँ 21 का अंतर हो सकता है,
21 प्रकृति का अंतर होगा।
विशेषता इतनी है, इनमें 12 कषाय और 9 कषायों के संक्रामक का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त पाया जाता है। अब यहाँ एक समय क्यों नहीं? हाँ मंजू बहन, वहाँ तो एक समय हमने ओघ में देखा था, 12 कषाय और 9 कषायों का संक्रामक का जघन्य अंतर एक समय घटित किया था वहाँ पर उपशम श्रेणी के उतरने वाला नहीं मरने वाला लिया। उतरने वाला तो अंतर्मूर्त यहाँ भी लग दिया है, जघन्य भी अंतर्मूर्त कहा, उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त कहा। वहाँ तो मार्गणा बदल जाती है ना, मनुष्य है वो देव हो जाता है, इसलिए जब मनुष्य देव होगा तो एक समय घटित होगा।
यहाँ पे तो अंतर,
ये ओघ में तो एक समय घटित किया था, यहाँ मनुष्य को मनुष्य ही रखना है तो उसको पूरी उपशम श्रेणी चढ़ के उतरना चाहिए, तो उसके लिए एक अंतर्मूर्त लगेगा ही। यहाँ लिखा ना जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त पाया जाता है। आशय है कि इसमें इनमें उपशम श्रेणी संभव है, अतः उक्त 21 प्रकृतियों के संक्रम का अंतरकाल बन जाता है। यानी मरकर देव होगा तो ही एक समय घटित होता है ना। और यहाँ हमारी मार्गणा तो नहीं बदलनी है, मनुष्य को मनुष्य में ही रखना है। विशेषा, तीर्यंचों में प्रारंभ में अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके अंत तक वैसा रहे किंतु अंत में मिथ्यात्व में चला जाए, यह क्रम तीर्यंच गति में एक पर्याय में ही बन सकता है। अतः तीर्यंच गति में अनंतानुबंधी चतुष्क के संक्रामक का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम तीन पल्य कहा है, एक पर्याय में ने एक भव में और एक ही बड़े से बड़ा भव तीन पल्य का है। तथा पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक में जो मिथ्यात्व सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामक का उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य कहा, सो यह उस पर्याय के उत्कृष्ट काल की अपेक्षा से कहा है, उस पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल दिया। इसे नरक के समान यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए, शेष कथन सुगम। आप कहेंगे फिर अनंतानुबंधी के पहले विसंयोजना कराई नहीं थी ना, जैसे पूर्व कोटि पृथक तो अधिक तीन पल्य कहा, वैसे अनंतानुबंधी में क्यों नहीं घटित होगा? मेरा प्रश्न क्या, देखो अनंतानुबंधी का जो अंतर घटित किया था उसके लिए कुछ कम तीन पल्य का बराबर, परंतु मिथ्यात्व सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के जो अंतरकाल कहा था पंचेंद्रियों में, तो उसके लिए
पूर्व
प्लस तीन पल्य का
वहाँ शुरुआत।
तो अनंतानुबंधी में ऐसा क्यों नहीं कहा, पूर्व कोटि पृथक्त्व प्लस तीन पल्य क्यों नहीं कहा, अकेला एक तीन पल्य क्यों लिया, ये प्रश्न है। हाँ तो पहले किया तो क्या होगा? हाँ हाँ बराबर है, बोलो।
नहीं नहीं,
नहीं।
नहीं नहीं
विधि तिर्यंच समय दृष्टि तिर्यंच में जन्म नहीं लेता,
नहीं लेता। मारना बदल जाएगी।
मिथ्या तो में अगर रहेगा
तो
क्षायिक होगा तो भी मनुष्य से तिर्यंच होगा।
क्षायिक
हमें तिर्यंच को तिर्यंच रखना है, तो तिर्यंच में से तिर्यंच जो रहता है
वाला
वो तो कभी समय दृष्टि तिर्यंच तिर्यंच में जन्मेगा ही नहीं। ख्याल में सम्यक के साथ कोई भी तिर्यंच दोबारा तिर्यंच में नहीं जन्मेगा, वो भले भोग भूमि का भी क्यों ना। तो किसी तिर्यंच ने पहले तिर्यंच आयु बांधी हो तो
नहीं, पर उसने तो विषय योद्धा तो शुरुआत में की है ना, तो वो
तो मिथ्या तो भी चला जाएगा।
तो काल कम हो जाएगा,
मिथ्या तो भी चला जाएगा। इसलिए अनंतानुबंधी के बारे में, अनंतानुबंधी की विसर्जना होने के बाद उसको सम्यक दृष्टि ही रखना है, तो सम्यक दृष्टि ही रखना और फिर मिथ्यात्व में लाना है बाद में उसी भव में। इसलिए उसको तीन पल्ले का लिया, मिथ्यात्व में सम्यक मिथ्यात्व में, वो तो सम्यक दृष्टि भी है मिथ्या दृष्टि में भी है। इसलिए पहले भव में उसको सम्यक तो प्राप्त करा गया, सम्यक तो उसे मिथ्यात्व में लाए और फिर वो मिथ्यात्व अवस्था में उसके पूर्व कोटि पृथक्त्व तक घुमावे और फिर तीन पल्ले में लावे, वो तो बात बन सकती है। इसलिए उसके साथ उसको अलग अलग कथन किया। ऊपर क्या बताया था, अनंतानुबंधी की विसर्जना करके जो अंतर होता है वो एक पर्याय में बनता है, और नीचे से दूसरी लाइन में क्या लिखा, ये पूर्व कोटि अदेव तीन पल्ले कहा, सो यह उस पर्याय के उत्कृष्ट काल की अपेक्षा था। उस पर्याय की उत्कृष्ट काल यानी क्या, कि तिर्यंच में रहने का
उत्कृष्ट काल,
अकेला तिर्यंच नहीं पंचेंद्रिय तिर्यंच, उसको पंचेंद्रिय रखने ना दीजिए, तो उसका उत्कृष्ट काल लिया। क्योंकि यहाँ क्राइटेरिया उन्होंने बता दिया, पंचेंद्रिय त्रिक की बात हो रही है उन्होंने बता दिया था, अकेले सामान्य तिर्यंच में पहले बता चुके हैं मिथ्यात्व के लिए या सम्यक्त्व के लिए, सम्यक मिथ्यात्व के लिए उत्कृष्ट काल उपार्ध पुद्गल परावर्तन वो बता चुके थे, क्योंकि वहां तो एकेंद्रिय का काल उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। परंतु पंचेंद्रिय पना रहते हुए यदि हमको घटित करना है तो पंचेंद्रियों में रहने का, कौन से पंचेंद्रिय तिर्यंच में रहने का उत्कृष्ट काल हम घटित करेंगे, तो पूर्व कोटि पृथक तो अधिक तीन पल्ले होगा। बात ख्याल में आई है, सामान्य तिर्यंचों के लिए अर्ध पुद्गल परावर्तन लिया और यहाँ पंचेंद्रिय के लिए, परंतु सामान्य तिर्यंचों में भी अनंतानुबंधी के लिए अंतर वही तीन पल्ले में कुछ कम लेंगे, क्योंकि अनंतानुबंधी की विसर्जना के बाद उसको सम्यक्त्व में रखना है और इनकी उद्वेलना के बाद हमको मिथ्यात्व में रखना है। तो मिथ्यात्व में तो अर्ध पुद्गल परावर्तन घटित होगा, परंतु सम्यक्त्व के रहते हुए तिर्यंच का एक ही भव लेना है तो वो तीन पल्ले का ही ले सकते। आगे बढ़ेंगे। देवों में मिथ्यात्व सम्यक्त्व और अनंतानुबंधी चतुष्क के संक्रामक का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, वो तो हर जगह हमने देखा था। ओघ में भी सम्यक मिथ्यात्व को इसलिए छोड़ा कि उसका एक समय भी घटित होता है कम से कम। सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामक का जघन्य अंतरकाल एक समय है ये बता दिया, और सबके संक्रामक का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 31 सागर है। जहां पर सम्यक भी हो और मिथ्यात्व भी दोनों गुणस्थान पॉसिबल है, वैसे 31 सागर वाला लिया है। कहां की 31 सागर, नवे ग्रह वेग की आई। किंतु 12 कषाय और 9 कषाय के संक्रामक का अंतरकाल नहीं है क्योंकि वहां उपशम श्रेणी नहीं है। इसी प्रकार भवन वासियों से लेकर उपरिम ग्रहवेग तक जानना चाहिए, किंतु सर्वत्र उत्कृष्ट अंतर कहते समय कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति कहनी चाहिए। जब देव इन जनरल कहेंगे तो 31 साल, और जब अलग अलग स्वर्गों की बात करेंगे, क्योंकि वो तो हमने अवान्तर भेद किए, जैसे भवन वासियों को लेना है तो वहां की उत्कृष्ट आयु, सौधर्म ईशान के लेनी तो उनकी उत्कृष्ट आयु, ऐसे ऊपर तक ग्रहवेग तक समझ। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। देवगति में उपरिम ग्रेवेग तक ही गुणस्थान परिवर्तन संभव है। इसी से मिथ्यात्वादी सात प्रकृतियों के संक्रम का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 31 सागर कहा है। शेष कथन सुगम है। ये बात ख्याल में आई आज अंतर की बात। काल में हमने लगातार संक्रमण का काल लिखा था, अंतर में जब तक वो बीच में अंतर पड़ गया, पहले संक्रमण कर रहा था फिर अंतर पड़ा और दोबारा संक्रमण करने लगा, उसको लेना। सम्यक्त्व सम्यक् मिथ्यात्व में तो उद्वेलना से प्रकृति नष्ट होती है, उसके बाद दोबारा तैयार होगी, फिर वो यथायोग्य ले लेना। अनंतानुबंधी में विसंयोजना के बाद का काल गिनना, फिर दोबारा संयोजना करने तक का। मिथ्यात्व में तो ऐसा कोई संभव नहीं है, क्योंकि उसकी क्षपणा हो जाती है तो इररिवर्सिबल है ना वो, तो अनंतानुबंधी जैसा नहीं है। अनंतानुबंधी और वो दो प्रकृतियां, उनमें सत्ता नष्ट भी होती है और फिर से उत्पन्न भी होती है, ऐसा ना मिथ्यात्व में होता है ना अन्य कषाय में होता है। अभी अवक्त भी को याद किया आपने। नहीं नहीं, इसमें भी होगा, संक्रमण में लगा रहे आप।
हाँ,
नष्ट होके होना, उसका बंद होना, बंद की अपेक्षा अवक्तव्य कह रहे आप। संक्रमण की अपेक्षा अवक्तव्य, अगर संक्रमण नहीं हो रहा था और हो रहा है तो मिथ्या तो में भी घटित होगा, क्योंकि गुणस्थान बदलते हैं, इसलिए आप बंद की अपेक्षा अवक्तव्य कह रहे हैं तो उसमें घटित होगा। यानी सत्ता की अपेक्षा भी उसमें अवक्तव्य होगा, सत्ता नहीं थी और बन गई।
संक्रमण की अपेक्षा तो अवक्तव्य होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही गुणस्थान में संक्रमण होता है, गुणस्थान की अपेक्षा। खाली सम्यक मिथ्यात्व में मालूम,
वो तो गुणस्थान चेंज होने पर संक्रमण, संक्रमण और असंक्रमण इतना ही देखते हैं, अवक्तव्य नहीं इसमें लगाते। अभी वो अवक्तव्य कब होता है, भुजाकार अल्पतर अवस्थित और अवक्तव्य ऐसे लगाते तभी लगते हैं, वो इसमें आएगी कि बात देखेंगे हम आगे। अभी नया अनुयोग यहाँ शुरू होता है, कितना 15 है क्या नंबर,
15
नंबर का। तो नाना जीवे ही भंग विचय हो, अब नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय का अधिकार है। ये जो हमने 24 अनुयोग द्वार देखे थे उसमें से 15 नंबर का है। अभी तक हमने एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व भी देखा, काल भी देखा और अंतर भी देखा। अब नाना जीवों की अपेक्षा वहां भंग लगाएंगे। अधिकार का निर्देश करने वाला यह सूत्र सुगम है। अब यहाँ अर्थ पद के बतलाने की इच्छा से आगे का सूत्र कहते हैं। अर्थ पद का अर्थ होता है कि उसका कोई रूल नियम बता देंगे तो उसको हम भंग विचय पर लगा सकते हैं। जैसिम पयड़ियनम संत कम्मम अथि तेसु पयदम, जिन प्रकृतियों की सत्ता है वे यहाँ प्रकृत है। ये जहाँ हम भंग विचय लगाएंगे नाना जीवों की अपेक्षा, कैसे लगाएंगे,
सत्ता
कोई संक्रमण वाले कोई असंक्रमण वाले, तो जिनकी
सत्ता है
उसी को ले लेंगे। क्योंकि जो कर्म भाव से रहित है उनका प्रकृत में उपयोग नहीं है। नाना जीवों में हम जो लगा रहे हैं, इस अर्थ पद के अनुसार ओघ और आदेश से भेद से निर्देश दो प्रकार का है। ये और बराबर करना। उनमें से ओघ का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। मिच्छत्त सम्मत्तानं सवजीवा नियमा असंकमायच संकमायच असंकमायच, क्या कहते हैं, मिच्छत्त सम्मत्तानं सवजीवा नियमा संकामयाच असंकामयाच। मिथ्यात्व और सम्यत्व के सब जीव नियम से संक्रामक संक्रामक हुआ, संक्रामक और असंक्रामक है।
नियम से सब जीव जो सत्ता वाले जीव है उनकी बात,
सत्ता है। वाले है हाँ। वो संक्रामक है और असंक्रामक भी है
सब जीव।
देखो क्योंकि मिथ्यात्व का संक्रम करने वाले सम्यक दृष्टियों का और संक्रम नहीं करने वाले मिथ्या दृष्टियों का सर्वदा सद्भाव देखा जाता है। ये नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है। जैसे हमने देखा ना मिथ्यात्व गुणस्थान सांतर है क्या, निरंतर है,
निरंतर
यानी उसका सद्भाव हमेशा ही होगा। ऐसे यहाँ लेना कि मिथ्यात्व का संक्रमण करने वाले जीव हमेशा पाए जाएंगे हाँ। और नहीं करने वाले भी हमेशा पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि समय दृष्टि भी हमेशा होगी और मिथ्या दृष्टि भी होगी। इसी प्रकार सम्यक तो प्रकृति की अपेक्षा से भी कारण का कथन करना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है यहाँ विपरीत क्रम से उक्त कारण का कथन करना चाहिए। विपरीत क्रम से क्यों? क्योंकि संक्रामक और असंक्रामक लिया तो संक्रामक के लिए कारण क्या है? क्योंकि मिथ्या सम्यक प्रकृति के संक्रामक क्या कहेंगे कि उद्वेल ना करने वाले मिथ्या दृष्टि भी हमेशा पाए जाएंगे। और संक्रामक यानी सॉरी संक्रामक में उद्वेल ना करने वाले मिथ्या दृष्टि और असंक्रामक सत्ता होते हुए जो संक्रमण नहीं कर रहे हैं वो कौन है?
सम्यक दृष्टि।
सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व के बारे में क्या कहा उन्होंने?
जो सम्यक दृष्टि वो संक्रामक होगा।
मिथ्यात्व का संक्रामक सम्यक दृष्टि है। यहाँ ऊपर क्या लिखा? क्योंकि मैं 120 वाला पॉइंट, मिथ्यात्व का संक्रम करने वाले सम्यक दृष्टियों का और संक्रमण नहीं करने वाले मिथ्या दृष्टियों का सर्वथा सद्भाव देखा जाता है।
इसी प्रकार सम्यक
अभी सम्यक के बारे में कैसा कहना? कारण का कथन विपरीत क्रम से, कारण का कथन है ना, अभी इसमें ऐसा कहेंगे
उल्टा कहना है।
सम्यक्त्व का संक्रम करने वाले मिथ्या दृष्टियों का और संक्रम नहीं करने वाले सम्यक दृष्टियों का सर्वदा सद्भाव पाया जाता। ख्याल में है ये कारण का विपरीत क्रम। ये तो मिथ्या तो समय मिथ्या तो हमेशा ही होगे, संक्रमण करने वाले भी और संक्रमण करने वाले।
विपरीत का मतलब सम्यक का संक्रम करने वाले मिथ्या दृष्टि होगा।
हाँ, यानी सम्यक प्रकृति का संक्रमण करने वाले मिथ्या दृष्टियों का और संक्रमण नहीं करने वाले सम्यक दृष्टियों का सर्वदा संभव सद्भाव होगा। अभी दे सम्मामिच्छत सोलस कसाय नवनो कसायाणम च तिन्नी भंगा कायवा। सम्यक मिथ्यात्व सोलह कषाय और नौ कषायों के तीन भंग करना चाहिए।
एक भी नहीं है, एक है और अनेक है।
सम्यक मिथ्यात्व का जो उद्वेलना करने वाले भी हमेशा पाए जाएंगे
हाँ। ये तो असंक्रामक
कौन है? समय दृष्टि भी और मिथ्या दृष्टि भी
सब
तो हमेशा पाए जाएंगे।
असंक्रामक की अपेक्षा तीन बार
असंक्रामक होगे क्या नहीं होगे?
होगे ना,
हमेशा होगे?
नहीं हमेशा नहीं होगे,
क्योंकि सासाधन गुणस्थान हमेशा नहीं।
एक भी नहीं होगा, एक होगा अनेक होगा।
तो ये तो सम्यक मिथ्यात्व के बारे में सासाधन गुणस्थान कभी होगा कभी नहीं भी होगा नाना जीवों की अपेक्षा।
और श्रेणी भी कभी होगी कभी नहीं।
और नौ नौ कषाय और सोलह कषाय, सोलह कषाय में भी विसर्जना करने वाले
हाँ उसमें भी अंतर देखा जाएगा।
उसमें भी अंतर देखा जाएगा,
सात दिन का अंतर है।
क्योंकि सत्ता होते हुए भी नहीं करने वाले ये कौन से? जो सत्ता होते हुए भी संक्रमण नहीं करते हैं अनंतानुबंधी के, ऐसे जीव कौन से? हाँ, जो आवली में प्रवेश कर चुके हैं विसर्जना वाले। तो ये जरूरी नहीं कि हर समय ऐसे जीव होंगे।
एक भी नहीं होगा,
क्योंकि एक के बाद एक ने भी प्रवेश कर दिया तो भी उसका काल लिमिटेड होगा। वो नहीं सत्ता, हाँ वो आवली भी ले सकते हैं और विसर्जना करते हुए जो आवली में प्रवेश किए अंतिम खाली संक्रमित होने के बाद एक आवली माइनस एक समय इतने निषेक है अनंतानुबंधी के, पर संक्रमण रुक गया है। संयोजना होने पर हाँ एक आवली तक उसको भी ले सकेंगे। देखो खुलासा, इसलिए तीन भंग हो गए उसके। हरेक का कारण अलग अलग है। सम्यक मिथ्यात्व के लिए हम दूसरे गुणस्थान की बात करेंगे, अनंतानुबंधी के लिए वो विषम योजना वाला जीव लेंगे, और बारह कषाय नौ कषायों के लिए उपशम श्रेणी वाला जीव लेंगे। तो ऐसे जीव सदाकाल होने की कोई संभावना नहीं है, कभी होगे कभी नहीं होगे, होगे तो कभी एक भी होगा और होगे कभी ज्यादा भी होगे। सासाधन वाला,
सासाधन और शुक्ति,
हाँ वो तो सांतर मार्गणा है,
सासाधन और सम्यक नित्यत्व दोनों गुणस्थान,
हाँ दोनों है, परंतु यहाँ
वहाँ पे संक्रामक दोनों में तो वो दोनों सांतर मार्ग,
दोनों सांतर मार्ग। खुलासा इस प्रकार है, ये तो हमने सोचा, अभी हम पढ़ेंगे इसमें। कदाचित सब जीव संक्रामक है, यानी वे भी जीव है इसमें, तो होते ही है ना, संक्रामक तो हमेशा होते ही होते हैं, परंतु असंक्रामक नहीं हो ऐसा भी बन सकता है, तो ये एक भंग हुआ, कदाचित सब जीव संक्रामक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कदाचित बहुत जीव संक्रामक है और एक जीव असंक्रामक है। ये हर एक में अलग अलग लगाना, अपना अपना अलग अलग लगा। फिर कदाचित बहुत जीव संक्रामक है और बहुत जीव असंक्रामक है, यहाँ इन दो भंगों में ध्रुव भंग के मिलाने पर तीन भंग होते हैं। विशेषार्थ, उक्त कथन का सार यह है, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के संक्रामक और असंक्रामक बहुत जीव तो सदा पाए जाते हैं, किंतु शेष प्रकृतियों के विषय में तीन भंग हैं। कदाचित सब जीव संक्रामक है, यह ध्रुव भंग है, यानी अनेक जीव संक्रामक है, हर में लगेगा, पहले में तो सभी संक्रामक ही है। आशय है कि शेष प्रकृतियों के संक्रामकों का सदा पाया जाना तो संभव है, किंतु असंक्रामकों के विषय में कोई निश्चित नियम नहीं कहा जा सकता। कदाचित एक जीव भी असंक्रामक नहीं होता, क्या होता है,
होता है, असंक्रामक है,
कदाचित एक भी जीव असंक्रामक नहीं होता। अच्छा, वो ध्रुव भंग ही बता रहे, जब एक भी असंक्रामक जीव नहीं पाया जाता तब उक्त तो ध्रुव भंग होता है, और जब पाए जाएंगे तो कभी एक होगा कभी अनेक होगा, यानी ऐसा हो सकता है कि एक भी जीव
असंक्रामक नहीं,
असंक्रामक नहीं
है।
इसके अतिरिक्त शेष दो भंग स्पष्ट ही है। इस प्रकार ओग से भंग विषय समाप्त हुआ। अब आदेश का कथन करने के लिए उच्चारणा को बतलाते हैं। यथा मनुष्यत्रिक में ओग के समान भंग है, अर्थात ओग से जो व्यवस्था बतलाई है वह मनुष्यत्रिक में घटित हो जाती है। कौन सी, कि ये सभी प्रकृतियों में सभी ये भंग तीनों तीन लगाए, जो मनुष्य नहीं होंगे उनमें वो 21 प्रकृतियों के बारे में अन्य दो भंग नहीं होंगे, वो तो सारे संक्रामक ही कहेंगे। अर्थात ओग से जो व्यवस्था बतलाई है वह मनुष्य त्रिक में घटित हो जाती है। नारकियों में मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग ओग के समान है, क्योंकि वहाँ वो सारे उद्वेलना वगैरह तो करने वाले हमेशा होगी, परंतु असंक्रामक वहाँ बताए ना, सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त्व और अनंतानुबंधी की बात
हमेशा होगी,
हाँ। यानी जो कथन आया है मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के तो हमेशा ही होंगे संक्रामक, और अन्य के बारे में जो बताया था भंग, वैसे भंग तो उसमें भी घटित हो गए तीन भंग। किसमें?
नारकियों में, यहाँ पे नारकी की बात,
नारकियों में सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का भंग ओग के समान है का अर्थ क्या है, उसमें तीन भंग बनेंगे, क्योंकि उसमें भी नहीं करने वाले भी जीव कभी कभी पाए जाए। किंतु 12 कषाय और 9 कषायों की अपेक्षा नियम से सब जीव संक्रामक है, यही एक भंग है, क्योंकि वहां तो उपशम श्रेणी नहीं है, इसलिए सभी संक्रामक ही है, असंक्रामक होने का कोई सवाल नहीं। बात यह है, इन 21 प्रकृतियों की अपेक्षा असंक्रामकों का भंग उपशम श्रेणी में प्राप्त होता है, पर नरक में उपशम श्रेणी संभव नहीं, इसलिए इनकी अपेक्षा यहाँ एक ही भंग बतलाया है। इसी प्रकार सब नारकी, तिर्यंचत्रिक, देव और उपरिम ग्रेविक तक के देवों के जानना चाहिए। यही रुकते अभी हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तकनहु सदा देव।